फिरौन कहता है काला फिरौन हूँ, और फिरौन बोला वमा रबुल आलमीन, और ये रबुल आलमीन जो है ये क्या होता है। अब आप देख लीजिए कि अब बीच में वो सारी तफसील जो है वो छोड़ दी गई, जो कि मूसा अलैहिस्सलाम ने जब ये बातें कही तो फिर फिरौन ने और क्या किया होगा और क्या कहा होगा। तो मजीद पैगाम की तबलीग तफसील जो कि मूसा अलैहिस्सलाम ने दी और फिरौन के दरमियान हुई, अल्लाह ताला ने उसको छोड़कर बीच में से जो बात कही है वो क्या है, काला फिरौन, के फिरौन कहने लगा वमा रब्बुल आलमीन, कि ये रब्बुल आलमीन जो है ये क्या है। तो रब्बुल आलमीन जो है ये फिरौन ने ऐसे नहीं कि उसको कुछ समझ नहीं थी इस्तेफाम के तौर पर पूछा, बल्कि किबर के तौर पर और इनकार के तौर पर पूछा कि ये जो है वो रब्बुल आलमीन जो है ये क्या होता है, ये तमाम जहानों का जो रब है, जो मालिक आका और फरमाबरदार, इसका क्या मतलब है। क्योंकि मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा था ना कि मैं रब्बुल आलमीन की तरफ से भेजा गया हूं, है ना। तो अब जो है फिरौन तो समझता था कि हुकूमत और इक्तदार मेरा है और कोई मेरी हुकूमत में जो है वो दखल अंदाजी नहीं कर सकता, मदाखलत नहीं कर सकता। तो ऐसा कैसे हो गया कि मेरी रियाया के एक हिस्से को जो मेरे गुलाम हैं तो उसको मेरे पास अपना नुमाइंदा बनाकर भेज दिया। तो इसलिए फिरौन पूछने लगा कि ये सारे जहान वालों का जो मालिक है, फरमा रवा होना है, ये क्या है, ये कौन है। क्या कहा, काला फिरौन वमा रब्बुल आलमीन, के ये कौन है और इसकी हकीकत क्या है। और आपको पता ही है ये बात ना, सूरत कसस आयत 38 में आता है, उसका दावा था, वो कहता था मा अलिंतु लकुम मिन इलाहिन गैरी, कि मैं अपने सिवा तुम्हारे लिए कोई और माबूद जानता ही नहीं। जब कोई और माबूद है नहीं तो हमारा रब्बुल आलमीन, काला रब्बु समावाती वल अर्द, वो मूसा अलैहि सलाम ने कहा कि रब है आसमानों का और जमीन का, वमा बैनहुमा, और जो इन दोनों के दरमियान है, इन कुंतुम मुकिनीन, अगर हो तुम यकीन रखने वाले। इससे क्या बात पता चलती है कि अब मूसा अलैहिस्सलाम जो हैं वो क्या जवाब दे रहे हैं कि मैं उस रब की तरफ से आया हूं जो के मालिक है, जो रब है आसमानों और जमीन का, और जो कुछ इन दोनों के जो है वो दरमियान है। इसका मतलब क्या है कि मूसा अलैहिस्सलाम ने बड़े खूबसूरत अंदाज में जो है वो दलील दी के आसमान और जमीन और जो कुछ इसके दरमियान है। क्योंकि फिरौन जो है वो अपने खुदाई का दावा तो करता था, वो खालिक तो नहीं था ना, तो इसलिए यहाँ पे इन्होंने ये दलील दी कि इन कुंतुम मुकिनीन, अगर हो तुम यकीन रखने वाले। अब यहाँ पे मुकिनीन और कुंतुम जमा की जमीरें और जमा के सीगे क्यों आए, इसलिए कि मूसा अलैहिस्सलाम का खिताब फिरौन के दरबारियों से भी था ना, फिरौन भी और उसके दरबारी सब मौजूद थे, इसलिए सबको मुखातिब किया कि तुम सोचते हो इस बात पे कि नहीं। काला फिरौन बोला लिमन हौलहू, जो उसके इर्द गिर्द थे, इर्द गिर्द कौन थे, दरबारी थे, अपने दरबारियों से कहने लगा अला तस्तमेऊन, कि क्या तुम सुनते हो, अला तस्तमेऊन। अब यहाँ पे फिरौन जो है बौखला गया है मूसा अलैहिस्सलाम का जवाब सुनकर, तिलमिला उठा है, दरबारियों की तरफ मुतवज्जो होकर कहते हैं सुनते हो ये शख्स क्या कह रहा है, बड़ा जबरदस्त अंदाज, अला तस्तमेऊन, तवज्जो से सुनना, पूरे ध्यान से सुनना, अजी सुन रहे हो क्या। यानी इनका ख्याल ये है कि मेरे अलावा भी कोई रब है, अला तस्तमेऊन, ये नई बात सुन रहे हो, ये अजीब बात सुन रहे हो। तो इस तरह से फिरौन झुंझला कर बौखला कर ये बात करता है, قال ربكم ورب آبائكم الأولين، قال ربكم ورب آبائكم الأولين، موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا تمہارا رب بھی اور تمہارے ان آباؤ اجداد کا رب بھی جو گزر چکے، یعنی گویا کہ میں صرف یہ نہیں کہہ رہا کہ تمہارا رب، بلکہ جو بھی تمہارے باپ دادا گزر چکے ہیں ان سب کا بھی رب تھا وہ، اور رب ہے، یعنی اللہ تعالیٰ उनका भी रब था और तुम्हारा रब भी। काला इन्ना रसूलकुम अल्लज़ी उर्सिला इलैकुम लमजनून। अब फिरौन जो है اور زیادہ غصے میں آتا ہے اور زیادہ جھنجھلا جاتا ہے، تل ملا اٹھتا ہے، کہتا ہے کہ بے شک یہ تمہارا رسول، اپنے درباریوں کو کہتا ہے کہ یہ جو تمہارا رسول ہے، یعنی یہ جو رسول ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے کون، موسیٰ علیہ السلام، اللہ جی یہ وہ ہے، ارسلا الیکم، یہ تمہاری طرف بھیجا گیا، مجنون، گویا کہ یہ مجنون معلوم ہوتا ہے، یہ تو مجھے بالکل ہی پاگل لگتا ہے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ یہ جو موسیٰ علیہ السلام ہے یہ مجنون ہے۔ مجنون کون ہوتا ہے؟ جس کو کوئی جن یا آسیب لگ جائے تو وہ جو ہے وہ ایسی باتیں کرنے لگے جو عجیب عجیب باتیں ہوں۔ تو کیوں کہا کہ مجنون کا ٹائٹل کیوں دیا؟ کہ یہ جو ہے مجھے ہی نہیں، ہمیں ہی نہیں، تمہیں ہی نہیں، تمہارے باپ دادا کو بھی احمق کہہ رہا ہے، ہاں ان کو بھی گمراہ ثابت کر رہا ہے، تو اس کے پاگل ہونے میں کیا شک ہے؟ یہ تنزیہ انداز ہے، رسولکم الذی، یہ رسول تمہارا، الذی ارسل الیکم، جو تمہاری طرف بھیجا گیا ہے، لمجنون، البتہ یہ مجنون ہے۔ تو طنز کے ساتھ لوگوں کو اکسانے کی خواہش بھی ہے کہ دیکھ لو یہ ہے وہ شخص، بنی اسرائیل کی قوم میں سے غلام جس کو ہم نے پالا پوسا تھا، قتل کیا اس نے، اس کے بعد اب اتنے سالوں بعد یہاں پہ رسول بن کر، رسالت کا مدعی بن کر، یعنی رسالت کا دعویٰ لے کر یہاں پر آ گیا، یہ مدعی ہے رسالت کا، تو یہ ہے مجنون۔ قال رب المشرقی والمغربی وما بینہما، موسیٰ علیہ السلام نے کہا رب ہے مشرق کا اور مغرب کا، وما بینہما، اور جو ان کے درمیان ہے، ان کنتم تعقلون، اگر تمہیں تھوڑی سی بھی عقل ہے، کہ تم مجھے پاگل کہہ رہے ہو اور اپنے آپ کو عقل مند سمجھ رہے ہو، ذرا سوچو تو صحیح کہ ایک یہ فرعون بیچارہ ہے اور خدا بن بیٹھا ہے کہ مصر کی چھوٹی سی زمین اور چھوٹا سا رقبہ اس پر یہ بادشاہ بن گیا، اور ایک وہ مشرق اور مغرب ہیں، پوری دنیا جو مشرق اور مغرب میں گھری ہوئی ہے، میں تو اس کی فرما روائی مانتا ہوں۔ اور یہاں پہ مشرق اور مغرب، شرق جب سورج نکلتا ہے اس کی روشنی پھیل جاتی ہے، غرب جب سورج ڈوبتا ہے تو اس کی روشنی چاہتی چلی جاتی ہے اور اندھیرا پھیل جاتا ہے، تو گویا کہ میرا رب تو وہ ہے جو سورج طلوع بھی کرتا ہے، اس کو غروب بھی کرتا ہے، تمہارا رب ذرا سورج کو طلوع کر کے اور غروب کر کے تو دکھائے، فرعون ایسا تو کر کے دکھائے، ہے نا، اگر تمہارے اندر کچھ بھی عقل ہے۔ قالا، فرعون نے کہا، لئن اتخذت الہا غیری، اگر تو نے میرے سوا کسی اور کو الہ مانا، معبود مانا، لاجعلنک، تو میں ضرور تم کو شامل کر لوں گا، ضرور بضرور، نون پر شد ہے، لام تاکید ہے، میں ضرور بضرور تم کو شامل کر لوں گا، من المسجونین، ان لوگوں میں سے جو سجن میں ہیں، مسجونین سین جیم نون جیل کے لیے آتا ہے، ہے نا، یہ اسم مفعول ہے کہ جو لوگ قید خانے میں پڑے ہوئے سڑ رہے ہیں، میں تمہیں ان میں شامل کر لوں گا۔ اس سے کیا بات پتا چلتی ہے کہ یہاں پر یہ بات پتا چلتی ہے کہ صرف موسیٰ علیہ السلام کو ہی وہ قید نہیں کرنے والا تھا، بلکہ کیا تھا کہ اس کی قید میں بہت سے لوگ تھے جو پڑے ہوئے سڑ رہے تھے، یعنی جب وہ کسی کو بھی دیکھتا تھا کہ میرے خلاف اس نے جو ہے وہ کوئی آواز بلند کی ہے یا کوئی نعرہ بلند کیا ہے، تو وہ کیا کرتا تھا، ان کو جیل میں ڈال دیتا تھا۔ تو اب فرعون نے جب یہ دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام کوئی بات سمجھ ہی نہیں رہے، بڑی بے خوفی کے ساتھ اپنی ایک بات کے بعد دوسری بات پہلی سے بھی بڑھ چڑھ کر کہہ رہے ہیں، دلیل کو پیش کر رہے ہیں، تو پھر اس نے کیا کیا کہ ایک کاری ضرب جو ہے وہ لگائی، اور بڑا بالکل بے حوصلہ ہو کر جو ہے وہ چلا اٹھا کہ اگر میرے سوا کسی اور کو معبود سمجھا تو یاد رکھو میں تمہیں قید کر کے چھوڑوں گا۔ اچھا، مفسرین یہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ آپ دیکھیں کہ میرے سوا کسی اور کو الہ سمجھنا تو جیل میں ڈالنے کی جو دھمکی دی گئی، اس کی وجہ کیا تھی کہ فرعون کو اپنی جو حکومت اور تخت تھا نا، اس کا خطرہ محسوس ہوا، اس نے کہا کہ رب العالمین کا نمائندہ بن کر یہ آیا ہے، گویا کہ یہ اپنا ایک سیاسی پیغام دے رہا ہے نا، کہ میں ایک حاکم کا متحت ہوں اور یہ مجھ سے مطالبہ کر رہا ہے کہ میں بھی اس کا متحت بن جاؤں، तो इसलिए उसने साफ साफ धमकी दे दी कि अगर इस मिस्र के मुल्क में तुमने मेरी हुकूमत के अलावा किसी और की हुकूमत का नाम लिया, किसी और का इक्तदार माना, तो फिर तुम्हें जेल की हवा जो है वो खानी पड़ेगी। ये है काला अवालो जे तू का भी शही मुबीन। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा अगर मैं ले अगरचे मैं ले आऊं तेरे पास एक ऐसी चीज मुबीन जो खुद वाजे है और दूसरों को वाजे कर देने वाली है, यानी क्या तू मेरी बात मानने का फिर भी इनकार कर देगा और मुझे जेल में भेजेगा कि मैं एक ऐसी अलामत पेश करूं जो इस बात को वाजे कर दे कि मैं अल्लाह का रसूल हूं और मेरा अल्लाह वो अल्लाह है जो रब्बुल आलमीन, रब्बुल समावाती वल अर्द व रब्बुल मशरिकी वल मगरिब। ये तीन दलीलें खास तौर पे उन्होंने दी ना कि मैं उनका नुमाइंदा हूं, तो क्या तुम फिर भी इनकार कर दोगे बिशेइन मुबीन, वाजे चीज लेकर आऊं। काल फाती बिही, फिरौन ने कहा अच्छा ले आ उसको, इन कुंता मिन सादिकीन, अगर है तू सच्चों में से। इसका मतलब क्या है कि अब फिरौन जो है वो क्या करता है कि दावे में लाओ कोई दलील, लाओ कोई निशानी, है ना। तो जैसे कि अहले मक्का कहते थे कि लाओ कोई निशानी अगर तुम रसूल हो, ये कहने लगा कि फाती बही, फिर अच्छा ले आ वो निशानी, इन कुंता मिन सादिकीन, अगर है तू सच्चों में से। फालका असाहू, अब उसकी जबान से ये बात निकली, फालका असाहू, फिर उसने जो है वो फेंका अपना असा, अपनी जो लाठी थी उसको फेंक दिया। किसने फेंका? मूसा अलैहिस्सलाम ने, और अल्लाह ने तो निशानियां देकर भेजा था दरबार में, और फिरौन को इसका मतलब है देख कर नहीं पता चला कि ये खास निशानी है, कहा कि ले आ निशानी, और उन्होंने क्या किया कि अपनी लाठी को फेंका। फायजा हिया सोबानु मुबीन, और फिर वो लाठी क्या थी, यकायक, इजा यकायक, उसी वक्त वो लाठी जो थी हिया वो सोबानु मुबीन सरी अजदहा था। अब वो लाठी जो थी वो सांप बन गई। सोबान का लफ्ज यहाँ पे आया है, और वैसे आप देखें कि सोबान कहते हैं ऐसे सांप को जो जसामत के एतबार से अजदहे की तरह हो, बहुत बड़ा सा हो। कुरान मजीद में कहीं इसके लिए हय्या का लफ्ज भी आया है, हय्यातुन। हय्या के मानी क्या होते हैं? ऐसा सांप जो जो है बहुत फुर्तीला हो, खा वो छोटा हो बड़ा हो, तो हय्या का लफ्ज भी इस्तेमाल हुआ है ना, हय्यातुन। और इसके अलावा जान का लफ्ज भी आया है, जान का लफ्ज फुर्तीली और तेज और छोटे सांप के लिए भी है, और हैया हर तरह के सांप के लिए, बड़ा है, फुर्तीला है, तेज है, जिस तरह का भी है। तो अब क्या हुआ, वो बड़ा सा एक सांप बन गया, तो कहने को बड़ा था लेकिन वो फुर्तीला भी था, वो तेज भी था, ठीक है। वह नजा यदाहू, और उसने खींचा अपना हाथ, यदाहू वह नजा, और आपको पता है ना नजा के माने क्या होते, खींच कर निकालना, वह नाजियाती गर्का, है ना। तो वह नजा यदाहू, फिर उसने अपना हाथ बगल से खींच कर निकाला। फायजा है या बेदा उलिन नाजरीन, और फिर ये सब देखने वालों के लिए चमक रहा था, रोशन था। तो आप देख लें कि ये दूसरा मौजदा था जो मूसा अलैहिस्सलाम ने पेश किया, और वो क्या था कि आपका हाथ जो था जब आपने उसको खींच कर निकाला तो बेदाऊ, बेदा के मानी क्या, रोशन भी था और चमकदार भी था। तो जब आपने हाथ निकाला तो मुफस्सरीन ये कहते हैं कि पूरा जो माहौल था ना यकायक जगमगा उठा, ऐसे जैसे सूरज निकलता है तो रोशनी हो जाती है ना, इस तरह पूरा जो माहौल और जगह थी और लोग थे वहां पे जो है वो रोशनी को महसूस करने लगे, वो जो था वो पूरा माहौल जो था वो जगमगा उठा। इससे क्या बात पता चलती है कि मूसा अलैहिस्सलाम ने बाकी दो अजीम निशानियां जो थी वो इन लोगों के सामने पेश की। काल लिल मलाई, फिरौन ने कहा, लिल मलाई मला के मानी क्या होते हैं, सरदार, जो उसके दरबारी थे, जो उसके पास पहुंचे हुए लोग थे, जो अपने आप को बड़ा समझते थे, लिल मलाई उनसे कहा, हौलहू जो उसके इर्द गिर्द थे, अपने गिर्दो पेश में जो लोग थे, इन्ना हाजा लसाहिरुन अलीम, कि यकीनन ये एक जादूगर है, साहिरुन जादूगर है, अलीम इल्म रखने वाला, तो उसने क्या इल्जाम लगाया कि ये बड़ा दाना जादूगर है। अब मोजात को देखकर बजाय इसके वो ईमान लाता और तस्दीक करता, इसने इनकार का रास्ता अख्तियार किया और कहा कि बड़ा फनकार जादूगर महसूस होता है, बड़ा इसके पास इल्म है। युरीद अन युखरिजकुम, चाहता ये है कि तुम्हें निकाल दे, मिन अर्दकुम, तुम्हारी जमीन से, बेसेह रही अपने जादू के जोर से। इसका इरादा क्या है कि अपने जादू के जोर से तुम्हें तुम्हारी जमीन से बेदखल कर दे। फमाजा तामरून, बताओ कि तुम्हारा क्या मशवरा है। यहाँ पे हमजा मीम रा अमर इस्तेमाल हुआ है और इसके एक मानी हुक्म के भी हैं और आमतौर पे ये हुक्म के मानी में आता है, लेकिन मुफस्सरीन ये कहते हैं कि यहाँ ये मशवरे के मानी में आया है, क्योंकि फिरौन तो ऐसा था ही नहीं कि वो किसी का हुक्म कबूल करता। तो अब वो कहता है कि बस तुम्हारा जो मशवरा है ना, बस मेरे लिए हुक्म का दर्जा रखेगा। फमाज अतामरून, अब बताओ तुम्हारा क्या मशवरा है, तुम मुझे क्या देते हो, अब क्या मशवरा देते हो। अब जो है, अब वो क्या करता है, ये आयत 35 जो 35 नंबर आयत है, ये बता रही है उसने अपने सरदारों को, कौम को खूब भड़काया कि पूरी की पूरी जो है ना वो मुल्क और सल्तनत ये खतरे में है, और मुझे ये डर लग रहा है कि ये अपने जादू के जोर से इस हुकूमत से बेदखल कर देगा। ये फिरौन की होशियारी थी कि मौजजात को तस्लीम करने की बजाय उसने लोगों को बदगुमान करने के लिए फिजा को हमवार करना शुरू कर दिया कि ये तो खतरे की घंटी है। आज के दौर में भी आप देखें कि दीन वाले लोग जब अल्लाह के दीन को फैलाने के लिए सियासत में अगर आ जाएं, तो लोग कहते हैं ये मौलवी शौलवी कुछ नहीं है, ये बस ऐसे ही इस्लाम का नाम लेते हैं, और फिर दीन जो है दीन के रूप में ये असल में हुकूमत पर कब्जा करना चाहते हैं। और बाज़ औक़ात बाज़ लोग जो है वो हो सकता है कि इस तरह से हुकूमत में आकर आवाम को धोखा भी दें, कलमे के नाम पर वोट लेने के बाद फिर कलमे को नाफिज ना करें, लेकिन जितने भी पैगंबर आए तो उन्होंने हुकूमत और इबादत यानी इख्तियारात और उसके साथ जो है वो अल्लाह की बंदगी, उसको वो साथ साथ लेकर चले। दाऊद अलैहिस्सलाम, सुलेमान अलैहिस्सलाम, खुद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख लीजिए कि उन्होंने मदीना में इस्लामिक स्टेट जो थी उसको कायम किया। तो अब भारत वो क्या कह रहे हैं कि जादू के जोर से तुमको तुम्हारे मुल्क से निकाल देना चाहता है। कालू अर्जे, अब वो कहने लगे अर्जे के मोहलत दो इसको व अखाहू और इसके भाई को। उन्होंने कहा अर्जे का क्या मतलब है, अगर इसका आप लें कि राजीम वो, तो मतलब है कि इसे जो है इसको रोक लीजिए, इसको जरा उम्मीद दिलाइए, वाखाहू और इसके भाई को। और बाज कहते हैं कि राजीम हा भी हो सकता है कि इसको पीछे डाल दीजिए, इसको पीछे डाल दीजिए, वाखाहू और इसके भाई को। और भाई का नाम क्या था, हारून अलैहिस्सलाम को, यानी इनको और इनके भाई को जो है वो पीछे डाल दीजिए। और दूसरे मानी क्या है कि इनको जरा एक उम्मीद दीजिए, अब मुकाबला होगा तो अब देखते हैं इनको एक उम्मीद लगेगी कि कौन जीता है, ये मानी भी हो सकते हैं। वब असिल मदाइनी, और भेज दीजिए मदाइन में, मदाइन मदीना की जमा है, और भेज दीजिए शहरों में हाशरीन हरकारे, हाशरीन हाशिर की जमा है, और मानी इसके क्या हैं कि जमा करने वाले, के वो लोगों को खड़ा करें, वो लोगों को हांकें, फिर वो उनको हांक कर जो है वो यहां पर लाकर जमा कर दें। और वो क्या करें हरकारे, हाशरीन जो जमा करने वाले, आम लोग नहीं, नकीब हरकारे, खास लोग जो है वो इस काम के लिए आप जो है वो इकट्ठे कर लें। तो अब दरबारी मशवरा दे रहे हैं कि बेहतर है कि जादू का तोड़ जादू से किया जाए, और जादू का तोड़ करने के लिए क्या करें कि जो हाशरीन मदाइन में जाएं, जो नकीब हरकारे शहरों में जाएं, वो क्या करें, या तू का बिकुल साहार इन अलीम, तो वो लेकर आए हर बड़े जादूगर को, अलीम इल्म रखने वाले को। यहाँ पे सहारिन जो है मुबालगे का सीगा है, यानी सहारिन के मानी क्या है कि बहुत बड़े जादूगर हो आने चाहिए मुल्क भर से, अलीम इल्म रखने वाले मतलब माहिर फनकार, तो उनको जो है वो लाना चाहिए ताकि ऐसा ना हो कि हम हमें शिकस्त हो जाए। फजोमिया सहारतू, फिर जो है वो इकट्ठे कर लिए गए जादूगर। अब जादूगर जो है उनको इकट्ठा किया गया, और सहारा तुम क्या है जादूगर। अब जादूगरों को जमा कर लिया गया। अब यहाँ पर जो है ये सहारा तू जो है इसके मानी क्या है कि एक जादूगर नहीं था, बहुत से जादूगर थे जो कि जमा कर लिए गए। तो सहर रखने वाले, जादू रखने वाले जो थे, जो माहिर थे, उनको जमा किया गया। ले मीकाते योमिम मालूम, मीकात, मीकात का रूट मट क्या है, वो काफ्ता है ना। तो जगह के लिए भी ये इस्तेमाल होता है, और कोई मुकरर वक्त के लिए भी, कोई मुकरर जगह हो या मुकरर वक्त, बाज़ का दोनों के लिए आता है। जैसे मीकात, हज और उमरे पे जाने वाले मीकात से अहराम बांधते हैं ना, तो एक जगह जो है वो मुकरर होती है। अब यहाँ पे क्या है कि ले मीकाती एक जगह पर जमा कर लिया गया उन लोगों को, और साथ ही क्या था योम मालूम के दिन भी मालूम था, वक्त भी मालूम था, एक मुकर्रा वक्त पर मुकर्रा जगह पर इन लोगों को जो है वो जमा कर लिया गया। और आप सूरह ताहा में पढ़ चुकी कि किस दिन जमा किया गया था, यौमुल ज़ीना, मेले के दिन, अजीमो शान मेला देखने के लिए, जैसे लोग दूर दूर से आते हैं ना, तो वो दिन था आपस में मुकाबला करने का। वकील लिन्नासी, और लोगों से कहा गया, हल अंतुम मुज्तमिऊन, के क्या तुम जमा होते हो। अब आप देखें कि अब जब दरबारियों के मशवरे पर जो है वो मूसा अलैहिस्सलाम के मुकाबले की तैयारी की गई कि खास दिन मुय्यन वक्त, और वो मेला सुबह सुबह के वक्त लगता था, तो उस खास वक्त पर तमाम माहिर जादूगर जो थे वो मरकज में मुल्क के दरबार में जमा होने के लिए उनको कहा गया। और वो दिन था मेले का, वक्त था चाश का, और मैदान मुकाबले के लिए एक मुंतखब किया गया जिसमें लोगों को जमा होने में सहूलत भी हो। और लोगों को खूब उभारा गया। कैसे उभारा गया कि एक खतरा दरपेश हो गया है, और अगर उस खतरे से अपने आप को बचाना है तो तुम जमा हो जाओ, तुम सबकी जिम्मेदारी है कि तुम अपने आप को उस खतरे से बचाओ। हल अंतुम मुज्तमिऊन, अब वो खतरे से बचने के लिए बताओ तुम जमा होते हो कि नहीं। ये जो है ना हल अंतुम मुज्तमिऊन, मुफस्सरीन कहते हैं कि ये इस्तफहामिया अंदाज कि तुम जमा होते हो कि नहीं, जैसे किसी को कहा जाए आंधी आ रही है, अभी भी खिड़कियां दरवाजे बंद करते हो कि नहीं, तूफान आ रहा है, बारिश आ रही है, और अब भी तुम जल्दी जल्दी घर भाग कर जाते हो कि नहीं। तो एक मुसीबत है, एक परेशानी है जो हमारी कौम पर आने वाली है, हल अंतुम मुज्तमिऊन। तो अब इसमें क्या है, उभारा भी जा रहा है और शौक भी दिलाया जा रहा है, तरगीब भी दिलाई जा रही है। कुरान मजीद में हमें ऐसी मिसालें मिलती हैं, जैसे पहले कहा कि जो है वो क्या, यानी आप पीछे देखें तो आप जो हैं कि मूसा वो क्या कहते हैं, अला तस्तमेऊन, सुनते हो। यहाँ पे भी इसी तरह का अंदाज है, और यहाँ पे भी क्या है कि हल अन तुम मुज्तमेऊन, के क्या जो लोगो तुम जमा होते हो, क्या तुम इज्तमा में चलोगे। अब ये तो फैसले का वक्त है, ये तो हार जीत का वक्त है। लअल्लना, शायद के हम, नत्तबे उस्सहरता, कि हम पैरवी करें जादूगरों के दीन की, इन कानू हुमुल गालिबीन, अगर वो गालिब हो जाएं, कि अगर वो गालिब हो जाएं, अगर जादूगर जीत जाएं, तो हो सकता है कि इस तरह जो है फिर हम भी उनकी पैरवी करने लग जाएं। तो इसके मानी क्या है कि ऐसा ना हो कि जादूगर का दीन कौन सा था, जो अबाउ अजदाद का दीन था, तो अगर जादूगर जीत गए तो ही अबाउ अजदाद का दीन जो है वो चल सकता है। तो अब वो उनको इस बात का पूरा पूरा खतरा महसूस हुआ, और इसके लिए उन्होंने तैयारी जो थी वो करनी शुरू कर दी। लअल्लना नत्तबिउ सहरता इन कानू हुमुल गालिबीन, शायद कि हम जादूगरों के दीन ही पर रह जाएं अगर वो गालिब रहेंगे।